नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि श्री राम मंदिर हमारे पूर्वजों के त्याग, उनकी तपस्या, अटूट श्रद्धा और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेम्बसानी ने आज नई दिल्ली में लैंड स्टैक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया और राजस्व शर्तों की शब्दावली पुस्तक जारी की। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने नए वर्ष पर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में PNG के दामों में 70 पैसे की कटौती की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज अवैध तरीके से नकली घरेलू सामान बनाने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये मंदिर हमारे पूर्वजों के त्याग, तपस्या, अटूट श्रद्धा और सांस्कृतिक स्वाभिमान के पुनरुद्धार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये दिव्य मंदिर आने वाली पीढ़ियों को धर्म पथ पर अडिग रहने और अपनी गौरवपूर्ण विरासत के संरक्षण की प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि वर्ष 2025 दिल्ली सरकार के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष रहा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वर्ष परिणामों पर केंद्रित रहा, वहीं वर्ष 2026 इसे आगे बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी गतिशीलता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्रों में दिल्लीवासियों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी रही। विकास के पहले चरण में सरकार ने 1,00,000 करोड़ के बजट के साथ कुल 9,000 करोड़ रुपए शहर में पेयजल, स्वच्छता और यमुना की सफाई के लिए सुनिश्चित किए। इसके उपरांत उन्होंने वर्षों से लंबित आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया, जिसके तहत 6,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। साथ ही शहर में 200 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए, जिसे सभी निवासियों को स्वास्थ्य कवरेज, मुफ्त दवा और निशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 लागू किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिल्ली के निम्न वर्ग के लोगों के लिए अटल कैंटीन जैसी पहल की शुरुआत की।
दिल्ली में बना नया एजुकेशन बिल, जिससे पेरेंट्स को मोटी मोटी फीस देने की जरूरत न पड़े। दिल्ली में 10,00,000 तक का इलाज आयुष्मान के माध्यम से लोगों के लिए फ्री किया गया। अटल कैंटीन, 5 रुपए में भरपेट भोजन।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि मिशन विकसित दिल्ली अब बातों से आगे बढ़कर कार्रवाई की ओर बढ़ गया है और 2026 स्पष्टता के साथ शुरू होगा। दृष्टि के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि राजधानी में धूल नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। श्री सूद ने कहा कि यह प्रदूषण सिर्फ मौजूदा कारणों या दिल्ली की वजह से ही नहीं है।
ये प्रदूषण केवल दिल्ली के कारण से नहीं है, आसपास के राज्यों का मौसम भी दिल्ली के प्रदूषण पर एक बड़ा कारक होता है। इसलिए दिल्ली सरकार पड़ोस के राज्यों से भी बात कर रही है, अपने धूल को रोकने का काम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने का काम, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कमी आए, ऐसे अनेक विषय दिल्ली सरकार लगातार देख रही है। पिछली सरकारों ने तो कुछ किया नहीं, अब प्रदूषण पर दिन रात गंभीर काम हो रहा है।
दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसी क्रम में श्री सूद ने विभिन्न निवासी कल्याण संघों के सुरक्षा गार्ड्स के लिए हीटर भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा दिल्ली सरकार के लिए सर्वोपरि है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेम्बसानी ने आज नई दिल्ली में लैंड स्टैक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया और राजस्व शर्तों की शब्दावली पुस्तक जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य भूमि अभिलेखों में अधिक स्पष्टता, अधिक एकरूपता और विश्वास स्थापित करना है। श्री पेमा सानी ने बताया कि इससे विभिन्न भाषाओं में भूमि संबंधी शब्दावली को सरल बनाया जा सकेगा, जिससे भारत की भूमि प्रशासन प्रणाली में विश्वास और मजबूत होगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने नए वर्ष पर दिल्ली एनसीआर के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस पीएनजी के दामों में 70 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कटौती की घोषणा की है। आईजीएल ने बताया है कि इस कटौती के बाद दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लाखों घरेलू कनेक्शन धारकों को सीधे बिल में राहत मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में घरेलू पीएनजी की नई कीमत अब 47.89 रूपये और गुरुग्राम में संशोधित दर 46.70 रूपये प्रति एससीएम हो गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में उपभोक्ताओं को 47.76 रूपये प्रति एससीएम की दर से गैस उपलब्ध होगी। ये प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि राजधानी में राइड शेयरिंग और कार पूलिंग की सुविधा फिर शुरू की जाएगी। दिल्ली सचिवालय में आज कई निजी टैक्सी कंपनियों के साथ की बैठक में श्री सिरसा ने एक महीने के भीतर राइड शेयरिंग पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कार पूलिंग एक अव्यावसायिक और साझा सफर का विकल्प होगा, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने बस और शटल सेवाओं का विस्तार करने का निर्देश भी दिया, जिससे कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सकेगी। श्री सिरसा ने कहा कि शहर में जितनी जल्दी बड़े स्तर पर ये सुविधाएं शुरू होंगी, उतना ही सड़कों पर गाड़ियां कम होंगी। दिल्ली के सेना अस्पताल अनुसंधान और रेफरल ने उन्नत इमेजिंग और कम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी के संयोजन से आई स्टेंट के साथ देश का पहला 3D फ्लेक्स एक्स एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक संपन्न किया है। ये देश में पहली बार हुआ है जब इस उन्नत तकनीक का इस्तेमाल ग्लूकोमा सर्जरी के लिए किया गया है। दिल्ली में बिजली आपूर्ति को विश्वसनीय और सतत बनाने के लिए सरकार ने आज अगले 3 वर्षों के लिए लगभग 17,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय योजना को लागू करने का निर्णय लिया। एक बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड DTL और डिस्कॉम पारेषण लाइन, ग्रिड सबस्टेशन और वितरण नेटवर्क को सशक्त किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन निवेशों का उद्देश्य केवल नई क्षमता को जोड़ना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि राजधानी के प्रत्येक क्षेत्र में निर्बाध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो सके। नई दिल्ली में नववर्ष 2026 के अवसर पर सुरक्षा इंतजामों के बारे में दिल्ली यातायात पुलिस के अपर उपायुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि एक परामर्श जारी किया गया है, जिसमें उन रेस्टोरेंट्स को पास दिए गए हैं जहां नए साल की पार्टी आयोजित की जाएगी। श्री गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने कुल 40 पॉइंट्स और लगभग 14 पार्किंग साइट्स चिन्हित किए हैं, जहां लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर यातायात नियमों का उल्लंघन होता है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
हमने एडवाइजरी इशू कर रखी है कि नए साल में जहां जहां पे ट्रैफिक हमारा सेक्शन रहेंगे, वहां पे गाड़ियां नहीं अलाउड होंगी, पब्लिक जा सकते हैं। और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जहां पे पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके लिए हमने पासेज इशू किए हैं, बाकी गाड़ियां अलाउड नहीं होंगी। इसके अलावा करीब ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे वहां पे स्टाफ डिप्लॉयड है, अगर कोई वायलेशन होता है तो उस पर हम एक्शन लेंगे।
दिल्ली यातायात पुलिस ने नववर्ष 2026 के जश्न को लेकर राजधानी में सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इस कड़ी में यातायात पुलिस ने खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में एकादशी और नए साल के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने के कारण राष्ट्रीय हाईवे 44 और आसपास की सड़कों पर यातायात धीमा और जाम रहने की संभावना जताई है। यातायात पुलिस ने यात्रियों को अर्बन एक्सटेंशन रोड और पल्ला बख्तावरपुर रोड जैसे वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके अलावा पुलिस ने मंदिर और राष्ट्रीय हाईवे 44 के पास सड़क किनारे पार्किंग से बचने को कहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिरसा ने कहा कि ये कैंटीन सिर्फ एक कैंटीन नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए सहारा है जिनके लिए दो वक्त की रोटी भी कभी कभी सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जगह जगह खुलने वाले अटल कैंटीन के माध्यम से अब जरूरतमंद लोग मात्र 5 रुपए में भरपेट और पौष्टिक भोजन पा सकेंगे।
रेखा गुप्ता जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 साल जन्म शताब्दी पर इस स्कीम को रोल आउट किया। 45 अटल कैंटीन पहले दिन खोली गई थी, आज भी अलग अलग जगहों पर कई कैंटीनों की ओपनिंग हो रही है। 100 कैंटीन का जो वादा है उसको पूरा कर रहे हैं। 5 रुपए में भरपेट खाना मिले, पौष्टिक आहार है, इसमें बहुत साफ सुथरे माहौल में बना हुआ खाना है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज अवैध तरीके से नकली घरेलू सामान बनाने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया के साथ बातचीत में पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी दिल्ली एनसीआर में विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पादों को प्रचलित ब्रांड के नाम पर बेच रहे थे।
क्राइम ब्रांच की ER1 की टीम ने एक रैकेट को वस्ट किया है, जो कि बहुत सारे फेक हाउस होल्ड आइटम जैसे कि देसी घी, इनो, ऑल आउट, बीट, टाटा सॉल्ट, उसको जो कि एडल्ट्रेटेड फेक थे, उस प्रोडक्ट को मार्केट में दिल्ली एनसीआर में सप्लाई कर रहे थे। इसमें 4 अक्यूज को पकड़ा है। एक का मैन अक्यूज मास्टरमाइंड नितिन है। इनसे टोटल 1,131 लीटर जो फेक एडल्ट्रेटेड घी अलग अलग ब्रांड का रिकवर किया है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 2 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 10 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पुलिस ने एक स्कूटी और 6 मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए हैं। देश के उत्तरी भागों में घने कोहरे के कारण आज रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। दिल्ली आने वाली 50 से ज्यादा रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं। कोहरे और कम दृश्यता के कारण आज 148 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। इन उड़ानों में से 78 आने वाली और 70 जाने वाली उड़ानें थीं। राजधानी में आज दिनभर कोहरा छाया रहा और सामान्य से अधिक ठंड महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सवेरे घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 386 दर्ज किया गया, जो वायु की बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 19वीं सदी में खोजे गए पिपरहवा अवशेषों को गौतम बुद्ध से संबंधित माना जाता है, जिन्हें शाक्य वंश द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। इनकी स्वदेश वापसी और सार्वजनिक प्रदर्शन देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और बुद्ध की शिक्षाओं में निहित शांति और करुणा को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि श्री राम मंदिर हमारे पूर्वजों के त्याग, उनकी तपस्या, अटूट श्रद्धा और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी ने आज नई दिल्ली में लैंड स्टैक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया और राजस्व शर्तों की शब्दावली पुस्तक जारी की। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नए वर्ष पर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में PNG के दामों में 70 पैसे की कटौती की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज अवैध तरीके से नकली घरेलू सामान बनाने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।